मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 3, जो क्रूस के रहस्य की क्लास का बाकी हिस्सा है, भाग 2। पिछली बार हमने किया था क्रूस का रहस्य भाग 1, और इस बार करेंगे क्रूस का रहस्य भाग 2, क्लास नंबर 3। तो पिछली क्लास में तो हमने देख लिया है प्रभु यीशु मसीह के कहन उन शब्दों का मतलब जो उन्होंने यूहन्ना 12:32 में बोले कि अगर मैं जमीन से ऊपर किया गया तो मैं सब लोगों को अपनी तरफ क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। तो ये बात बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह उस छुड़ौती के बलिदान के बारे में, वो बराबर कीमत के बारे में जो उन्होंने अदा की एक इंसान के बदले किए, और वो कौन था? आदम। आदम के बदले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, बराबर कीमत दी, जिससे सारी मनुष्य जाति को क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। मृत्यु से क्या मिल गया? छुटकारा। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें चाहे ना करें। जैसे उदाहरण के तौर पे हिटलर लगा लो, उसामा बिन लादेन लगा लो, सद्दाम हुसैन लगा लो, कोई भी इस धरती का बड़े से बड़ा पापी जिसे हम मानते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा इंसान था, उसको भी क्या कर दिया? पुनर्थान दिलवा दिया। क्योंकि वो किसकी संतान है? आदम की संतान है। तो आदम के लिए, आदम ने जैसे पाप किया था, आदम के पाप करने से जो संतान बिचारी अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी, निर्दोष थी, वो पापी ठहर गई परमेश्वर की नजर में। उसी तरीके से जब आदम के साथ कुछ अच्छा हुआ, आदम का छुटकारा किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो क्या हो गया? वापस छुटकारा मिल गया सबको मृत्यु से। तो यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने साफ साफ वचनों में बोला कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचवई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने सबके छुड़ौती के दाम पे अपने आप को दे दिया। और अब हम क्या पढ़ा, एंड में हमने क्या किया था? जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15:21-22 में ये वचन पढ़ लीजिए फिर से। पहला कुरिन्थियों 15:21-22। जी, पहला कुरिन्थियों 15:21-22। पंद्रह का 21-22।
वरन हम परमेश्वर के झूठे
नहीं, एक इंसान के द्वारा,
क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
हाँ।
और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
तो यहाँ पे ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वचन कोई बताता नहीं, 21:22, ये वचन कोई बताता नहीं है। आज जो जितने भी लोग मर रहे हैं किसमें मर रहे हैं? नहीं,
आदम में।
आदम ने पाप किया, उसके पाप की वजह से सब पे क्या आ गया? दंड। चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, सब किसमें मर रहे हैं? आदम में। उसी तरीके से सब मसीह में जिलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि मसीह को अपनाओ तो ही मिलेगा मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो आज चुनाव चल रहा है वो बहुत खास है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, कि जो आज मसीह के विश्वास करते हैं, जो मसीह का पीछा करते हैं, उनके लिए क्या खास चीज है, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि क्रूस के रहस्य में हम देख रहे हैं कि मसीह ने तो सारी मनुष्य जाति का क्या कर दिया? छुटकारा, मृत्यु से, है ना। तो ये एक सिद्धांत पे काम करता है। आपके बेटे का नाम सिद्धांत है तो सिद्धांत का मतलब होता है, पता है आपको? सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, एक रूल। हाँ, तो वो रूल क्या है वो पढ़ते हैं इब्रानिया 7:9-10। दस जी,
क्योंकि है ना, क्योंकि जिस समय मलिक सिद्दीक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वे अपने पिता की देव था
जी। आगे
तो हम यह कह सकते हैं कि लेवी ने जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिक सिद्दीक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था।
तो अभी आपको ये बात मुझे थोड़ी डिटेल में समझानी पड़ेगी। लेवी, आपको पता लेवी कौन है?
वो जो सुने हुए होते थे वो खा सकते थे उसका, वो परमेश्वर ने उनको सुना था ना कि तुम वो तंबू में जाएंगे
जी,
वो सेवा टहल करेंगे।
मैं बताता हूँ, वही करेक्ट। एक्चुअल में क्या था, अब्राहम था, अब्राहम का पुत्र कौन था? इसहाक। इसहाक का पुत्र कौन था? याकूब। और याकूब के थे 12 पुत्र। याकूब के कितने पुत्र थे? 12,
जिनको
इज़राइल बोला गया है। 12 जातियां, 12 कुल, 12 फैमिली। तो ये 12 में से 11 बंटवारे हुए और 12वां जो लेवी था, लेवी को परमेश्वर ने क्या था, लेवी का काम परमेश्वर के तंबू में सेवा करनी, परमेश्वर के मंदिर में सेवा का काम था। तो बाकियों को मिले 11 हिस्से और उन 11 को मिलना, 11 को क्या देना था? दशवांश, 10 10 10 10 10। अच्छा। तो लेवी को कितना मिला? 110
मिल गया, तो क्यों भी चुना
हुआ 110, बाकियों से 10% ज्यादा।
अच्छा।
क्योंकि 11 को 10 10 10 कर लो तो 110 हो गया। बाकियों के पास 90 और लेवी के पास
110।
तो यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहा है पौलुस, क्या बोल रहा है, जब लेवी पैदा भी नहीं हुआ था, लेवी पैदा भी नहीं हुआ था और लेवी का बाप भी पैदा नहीं हुआ था याकूब, और याकूब का बाप भी पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त अब्राहम दशवांश देता था किसको? मलिक सिद्दीक को। मलिक सिद्दीक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है बाइबल में, मैं बताऊंगा, बहुत डीप चीज है, क्योंकि विश्वास का पिता माना जाता है किसको? अब्राहम को। और अब्राहम मलिक सिद्दीक को दशवांश दे रहा है, तो मलिक सिद्दीक क्या चीज होगी?
अब्राहम इतना पवित्र माना तो वो उससे कितना बढ़ के होगा।
तो मलिक सिद्दीक को जब बोलता वो दशवांश देता था, तो ये बोल सकते हैं कि जब अभी उसके पेट में ही था अब्राहम के, ये लेवी, लेवी तो अब्राहम की चौथी पीढ़ी है, उसने भी दशवांश दे दिया। मतलब लेवी ने भी दशवांश दिया किसके जरिए से? अब्राहम के जरिए से। किसको? मलिक सिद्दीक को। तो ये है सिद्धांत, समझ में आया? उदाहरण के तौर पे आपके, मान लो परदादा, आपके दादा के पिता ने कुछ किया जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, या सिद्धांत पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये मान सकते हैं कि वो सिद्धांत ने भी किया किसके जरिए से? आपके परदादा के जरिए से। आपने भी किया आपके परदादा के जरिए से। तो ये बात पौलुस यहाँ पे बता रहा है, ये है एक के बदले एक का सिद्धांत। तो यही है, जैसे आदम ने जब किया, आदम की कोख में था सब सारा संसार, हवा भी कहाँ थी? इधर इधर से ही तो निकली। अभी आदम की कोख में था ये सारा संसार, लेकिन आदम ने कुछ किया तो सारे संसार ने क्या कर दिया? यही तो रोमियों में बोलता है ना, एक ने पाप किया और सारे पापी ठहर गए, और मृत्यु का दंड सब पे क्या हो गया, जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। केन, केन कब पैदा हुआ? जब अदन की वाटिका से निकल गए। लेकिन केन तो जन्म से ही पापी था, आबिल तो जन्म से ही पापी था, वो तो मृत्यु के दंड के नीचे आ गए, अधीन आ गए, है ना? ये बात समझ आ गई? तो ये है एक के बदले एक का सिद्धांत, ऐसे काम करता है। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या किया, वो एक जिसकी वजह से ये हुआ था उसके लिए बराबर कीमत दे दी, यानी जीवन दे दिया, संपूर्ण जीवन। प्रभु यीशु मसीह अगर प्रभु यीशु मसीह तो पापी नहीं थे, तो उन पे दंड ये नहीं था मृत्यु का,
नहीं।
वो चाहते या अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो वो जीते रहते जीते रहते, रहते जीते रहते मरते ही ना, क्योंकि उन पे तो ये दंड नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये अपनी इच्छा से ये बराबर कीमत दी ताकि वो आदम को छुड़ाए, और जब आदम को छुड़ाए तो उससे उसके जरिए से कौन छूट जाए, सारा संसार। तो ये एक इतनी अच्छी खबर है, ये है असली खुशखबरी संसार के लिए। भाई साहब चिंता मत करो, सामने घर में मृत्यु होगी, चिंता मत करो, ये प्रभु में जी उठेगा बहुत जल्दी। मुझे मालूम है आज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं आपको गवाही के तौर पे बता रहा हूं कि ये जिस स्थिति में मरा है उसी स्थिति में वापस उठेगा। ये आज हम देखेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो इसके लिए परमेश्वर ने, ये भी परमेश्वर ने एक प्लान रचा है, ये पढ़ लो प्लान, रोमिया 8:20-21। जी
क्योंकि क्योंकि जिसकी अपनी इच्छा से नहीं और अधीन करने वालों की ओर से देवता के अधीन इस आशा से की गई।
जी जी पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए।
की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें।
तो ये वचन का मतलब समझे आप?
एक बार मैं दोबारा
पढ़िए 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 पढ़िए।
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आदीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के आदीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश की दासत्वता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी।
समझे इस वचन का? इस वचन का मतलब, ये बड़ी अनोखी सी भाषा है, चलो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले पहला वचन 20, उसके बाद 21, एक एक करके पढ़ेंगे। बोलता है क्योंकि सृष्टि विनाश के अधीन की गई अपनी इच्छा से नहीं बल्कि करने वाले की इच्छा से एक आशा में, एक आशा में। तो यहां पे सृष्टि, एक एक शब्द लेके चलेंगे। बोलते सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या है? मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति, यानी सृष्टि मतलब मनुष्य जाति विनाश के हवाले की गई। विनाश क्या है? पाप और मृत्यु, पाप और मृत्यु है विनाश, अपनी इच्छा से नहीं। आपको, आपको, मुझे, आपको या किसी को भी परमेश्वर ने ये आजादी नहीं दी कि हम अपनी वो करें कि नहीं मुझे नहीं जाना है विनाश के हवाले, नहीं, परमेश्वर ने नहीं पूछा, परमेश्वर ने कर दी, परमेश्वर ने कर दी। क्यों की परमेश्वर ने? जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, एक परिवार होता है, परिवार में एक हेड होता है पिता, जिसे हम फादर बोलते हैं, है ना, पिता ना। तो पिता जो भी फैसला लेता है वो परिवार के किसके लिए होता है? अच्छाई के लिए। जैसे आपको सिद्धांत के लिए एक लड़की आपको अच्छी लगी, फैमिली, आप लड़की पसंद करते हो, सिद्धांत का मैं रिश्ता इसके साथ करूंगा, सिद्धांत को, सिद्धांत ये लड़की मैंने पसंद कर ली है तेरे लिए, अच्छाई के लिए। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, जब माँ की कोख में होता है, हम बोलते लड़की होगी तो हम ये नाम रखेंगे, लड़का हो गए तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो उसे डॉक्टर बनाएंगे, लड़का होगा तो उसके उसको ऐसा करेंगे, करते हैं ना, सारी प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। बच्चे से पूछते हैं? नहीं। तो क्यों, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम अच्छा ही करेंगे ना। इसीलिए हमारा स्वर्गीय पिता जो सारी सृष्टि का पिता है, क्या उसने गलत किया? उसने क्या की? विनाश के पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु के हवाले किया एक आशा में। वो आशा कौन सी है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे ये वचन जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये पिता परमेश्वर ही सारी स्वर्ग और धरती का पिता है। पढ़ लो अफिसियों 3:14-15।
मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए जाता है।
देखो स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम पिता परमेश्वर के नाम से रखा जाता है
कि वह कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
तो पिता परमेश्वर के नाम से रखा जाता है इस धरती पे हर घराने का नाम। तो परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए मनुष्य जाति के लिए एक बहुत सुंदर योजना रख छोड़ी है। वो योजना आपको आम तौर पे देखने को नहीं मिलेगी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो 20वां वचन समझ आ गया 8:20। परमेश्वर ने वचन का अर्थ मैं बोल देता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को जानबूझ के पाप और मृत्यु के हवाले किया, किसी की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से, ना कि हमारी इच्छा से, एक आशा में। आशा क्या है 21वें वचन में पढ़ो। हाँ जी, ताकि सृष्टि खुद, हाँ जी रोमियो 8:21
की सृष्टि भी आप ही आशा से की गई, की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे।
देखिए परमेश्वर इसमें कुछ नहीं करेगा, सृष्टि को खुद छुटकारा पाना है विनाश से, पाप से भी और मृत्यु से भी। इसका आधा हिस्सा तो पूरा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे मृत्यु उठाई, मृत्यु ने अपनी जान दी क्रूस पे, तो आधा हिस्सा पूरा हुआ। सृष्टि खुद ही यानी मनुष्य जाति में से कोई उठा, उसने बलिदान दिया और मृत्यु से छुटकारा करवाया। पाप से छुटकारा होना बाकी है, मृत्यु से छुटकारा हुआ है, पाप से छुटकारा होना बाकी है। ये है उद्धारता जिसके बारे में हम बात करते हैं। परमेश्वर सारी मनुष्य जाति के लिए एक उद्धारता लेके आ रहे हैं। उद्धारता क्या है? पाप और मृत्यु दोनों से छुटकारा। मृत्यु से छुटकारा परमेश्वर ने दिला दिया है, पाप से छुटकारा दिलाना बाकी है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा ये भी वचन ही बोलता है। पढ़ते हैं 1 तिमोथी 3:2-3 और 4।
यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले।
देखो ये है परमेश्वर की योजना, सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। और वो अगला स्टेप क्या है? और वो क्या कर ले?
और वो सबको भली भांति पहचान ले।
यहाँ पे दो नंबर, 1 नंबर 2 डाल लो। पहला परमेश्वर का काम है बचाना, उसके बाद सत्य का ज्ञान देना। सत्य का ज्ञान समझते हैं आप क्या है? यस, परमेश्वर का वचन। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि बचाना, आजकल ईसाई भाषा में बचाने का मतलब क्या पता है? कि स्वर्ग में ले जाना। हम यही बोलते ना, अगर बचना चाहते तो मसीह पे विश्वास करो। तो समझते हैं स्वर्ग में जाना, नहीं, परमेश्वर की ये कभी भी योजना नहीं है कि सारी मनुष्य जाति को स्वर्ग में ले जाए। धरती क्यों बनाई है फिर धरती क्यों बनाई है? ये योजना नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर की योजना बचाना। बचाने का मतलब पता क्या है? बचाने का मतलब है मृत्यु से बचाना, मृत्यु से बचाना। बचा लिया मृत्यु से? यस, बचाया। मसीह अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि वो सबका क्या करे? छुटकारा। ये उद्धार, ये है असली उद्धार जिसे हम मुक्ति बोलते हैं, उद्धारता। उद्धार ये है परमेश्वर का कि पहले बचाए और फिर सत्य क्या क्या करे जी। तो इसमें अभी आज आपको एक मैं चीज बताता हूं, आज जो उल्टा है। आज हम उल्टा पता क्या करते हैं? आप हम नोट किया होगा, हम जब किसी अविश्वासी को, जब भी प्रभु का किसी को संदेशा देने, पता क्या बोलते जाके? मसीह को स्वीकार करो तो क्या होगा?
आपसे छुड़ाए जाओगे,
बचाए जाओगे,
जीवन
के उत्तराधिकारी बनोगे जी। लेकिन ये उल्टा है, ये बाइबल के उल्टा है। परमेश्वर की योजना है क्या है? पहला काम बचाना। बचाना किससे? मृत्यु से। फिर सत्य का ज्ञान देना, क्योंकि पाप से छुटकारा अगर हो सकता है तो किस चीज से? पाप वचन के द्वारा। वचन के द्वारा हमें पवित्र कर, तेरा वचन। पवित्रता आएगी तो पाप के जरिए से। लेकिन आज इसको उल्टा कर दिया है, मसीह को अपनाओ तो बचाए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? पहले बचाए जाओगे फिर सत्य का ज्ञान जानोगे। आज हम बोल रहे हैं सत्य का ज्ञान प्राप्त करो फिर बचाए जाओगे, ऐसा नहीं है।
पहले प्रभु ने बचाया फिर इसके बाद वचन का ज्ञान
दिया। यस, ये
लेकिन पास्टर जी इसमें एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ?
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
अभी आप जैसे बोल रहे थे, लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि अगर परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी तो मान लो हमारा उद्धार हो गया, तो जान भी तो पापियों के लिए, पाप के लिए, क्योंकि पाप से छुड़ाने के लिए तो उन्होंने मृत्यु को जो उन्होंने इस्तेमाल किया है संसार में, वो हमें पाप से छुटकारा, हमारे पापों के लिए तो किया ना उन्होंने?
बिल्कुल हमारे पापों के लिए, लेकिन जो जान दी ना, जान जान दी छुड़ौती के लिए। छुड़ौती किससे? मृत्यु से। अगर अगर
तो मृत्यु आई थी तो पाप के द्वारा ही ना?
जी पाप के द्वारा आई बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर का काम कोई वो नहीं है कि झटके वाला। परमेश्वर का काम कानून के मुताबिक चलता है। आप कानून समझते हो ना, आप तो आर्मी में रहे हो, एक एक तरीके से काम होता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो मसीह यीशु जान नहीं देते तो किसी को भी पुनर्थान मिलता नहीं? मिलता ना। अगर पुनर्थान ही नहीं मिलता तो पाप से छुटकारा कैसे होता? तो अभी पहले क्या करना है? परमेश्वर को अपनी पावर दिखानी है कि मैं क्या चीज हूं। मैं दिखाता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें मौत से छुड़ाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें पाप से छुड़ाना है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मुझे आपके जीवन में कार्य करना है तो पहले मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना, ताकि आप मुझ पे थोड़ा विश्वास कर सकें। तो यही परमेश्वर करेगा। पहले क्या करेगा? बचाएगा। किससे? जो स्थिति में आज इन मनुष्य जाती है वो कौन सी है? पाप और मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा होगा। तो ये तो बात पढ़ लो, मैं ये बात अभी हम और गहराई में चलते जाएंगे आगे। प्रेरितों के काम 24:15, जी।
और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा।
धर्मी
और अधर्मी।
धर्मी कौन?
जो प्रभु को पर विश्वास करते
मानते। और अधर्मी कौन?
जो परमेश्वर को नहीं मानते। पापी लोग हैं, मानते नहीं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते।
आप एक बात ब्रदर, मैं आपको आपके प्रश्न के बदले में प्रश्न करता हूँ। जो आज हम ईसाई जो मानते हैं हम ईसाई हैं, क्या हमारा पाप से छुटकारा हो गया?
नहीं, अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो अभी छुटकारा हुआ नहीं है, वचन बोल ही रहा है, क्लियर बोल रहा है,
हम पापी हैं, मरते दम तक पापी रहेंगे। जब तक ये शरीर है ना, ये तो गिरा हुआ शरीर है,
क्योंकि प्रभु ने बोल दिया था, वचन भी अभी बोलता है कि एक भी यहाँ पर धर्मी नहीं है,
जी जी जी,
उसमें कोई बचा ही नहीं।
हाँ, हमारे पास वचन है लेकिन पाप से छुटकारा हमारा भी नहीं हुआ है। तो पाप से छुटकारा होता है वचन के द्वारा, और वो धीरे धीरे वो बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे हम वचन ये पढ़ रहे हैं, ये है बहुत बड़ी सच्चाई पुनर्थान के बारे में, सब मुर्दे जी उठेंगे। इसको बोलते हैं शब्द पुनर्थान, रेजरेक्शन, इंग्लिश शब्द है रेजरेक्शन यानी पुनर्थान। ये शिक्षा बाइबल की बाकी सारी धर्मों में बिल्कुल अनजान है, नहीं जानते हैं। हिंदू लोग क्या मानते हैं कि जब कोई मर जाता है उसकी आत्मा निकलती है, कुत्ते में, कुत्ता मरा तो बिल्ली में, ऐसे घूमती रहती है। मुसलमान बोलते हैं पैराडाइज, ऐसा ये वो, कुछ क्रिश्चियन भी बोलते हैं पैराडाइज, जैसे परदोस बोलते हैं। बुद्ध वालों का और वो जो चलता है उनका पुनर्जीवन चलता रहता है, बोलते हैं ऐसा 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 होता है, वो भी हिंदुओं के मुताबिक। तो ये पुनर्थान की जो असली पहचान इवन बाइबल पढ़ने वालों को भी नहीं है। आप समझते हो पुनर्थान क्या है? पुनर्थान है ये परमेश्वर की उस शक्ति के बारे में बताता है कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि आप जिस स्थिति में मरे हो उसी स्थिति में वापस। मान लो कोई 10 साल की उम्र में मरा है, कोई 15 की, कोई 20, 25, 30, 50, 60, 80, 90, जिस स्थिति में वो जिस वक्त वो मरा है उसी स्थिति में वापस। ये है पुनर्थान, ये है परमेश्वर की शक्ति कि आज जो बेचारे हजारों साल पहले मर गए, जिनकी मिट्टी का भी नहीं पता कहाँ है, जिनकी राख जो जला दी गए उनका भी नहीं पता है कहाँ है, कहाँ बहा दी, कहाँ कुछ नहीं, परमेश्वर की शक्ति से जीने के लिए फिर से जी उठेंगे। ये बात विश्वास करने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, होती है ना मुश्किल, तो उसके लिए हम वचन देते हैं। यूहन्ना 5:28, जी,
इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे।
ये कहां से निकल रहे हैं? माँ की कोख से नहीं आ रहे हैं, ये कब्रों से आ रहे हैं। और ये जो शब्द है, मैंने बोला ना रेजरेक्शन, जो पुनर्थान, वो ग्रीक शब्द था एनास्टेसिस, एनास्टेसिस, जिसका मतलब होता है जीवन के लिए फिर से उठाया गया, जीवन के लिए फिर से उठाया गया। और इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, और चंबे वाली बात बताता हूं जो नहीं सुनी होगी आज तक, कि जो बुढ़ापे में मरे हैं, आपके पिताजी किस उम्र में मरे?
85
बुढ़ापे में मरे, वो वापस अपनी जवानी के दिनों में आएंगे। ये वचन बोलता, मैं नहीं बोलता, ये एक संपूर्ण इंसान की उम्र होती है 30 साल, और 30 साल की स्थिति में वापस आएंगे।
तो विश्व 30 साल या 35 साल तक भी?
जी, 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया था। ये बात मैं वचन के जब द्वारा बताऊंगा आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पुनर्थान खाली यही नहीं कि जीवित कर दिया, उसके बाद आपका जीवन फिर से वापस आप में आना है, ठीक है। और एक और बात पढ़ लो, ये बात यशाया 26:19 में, ये यशाया भी बोल रहा है कि मुर्दे जो पृथ्वी है वो मुर्दों को निकाल देगी। यशाया 26:19,
लिखा है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे
जी,
मुर्दे उठ खड़े होंगे
जी,
हे मिट्टी में बसने वालों जाकर जय जयकार करो।
समझे, तो पुनर्थान होगा जिस स्थिति में आप मर रहे हो।
26 का 19
जिस स्थिति में आप मरे हो उसी स्थिति में, चाहे कोई दो, एक बच्चे पैदा होते ना दो मिनट का सांस लेते हैं और मर जाते हैं, वो भी जिस वो जो इस धरती पे आया और सांस ली वो भी जीवित होंगे और इस धरती पे जीने के लिए फिर से वापस आ जाएंगे। तो परमेश्वर तो सारी मनुष्य जाति को क्या कर रहा है, बचा रहा है। कहां से? मृत्यु से। कैसे? पुनर्थान देके। ये है पहला स्टेप परमेश्वर की उदारता का। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या था? सत्य का ज्ञान देना। सत्य का क्या करना है? ज्ञान देना है। तो जब वो जी उठेंगे तब उनको सिखाई जाएगी ये बाइबल, सत्य का ज्ञान। आपके पिता मर गए, उन्होंने बाइबल नहीं जाना, लेकिन पुनर्थान के बाद उनको ये सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। अगला जन्म नहीं सिस्टर,
जो हम मर चुके हैं ना, परमेश्वर ने वादा किया होगा हमसे कि मरने के बाद जब स्वर्ग जाएगा परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर जैसे दोबारा आएगा तो हम सारे के सारे फिर जी उठेंगे।
तो एक ही जीवन है, लेकिन एक जीवन में आपको दो चांस मिल रहे हैं। मैं बताता हूँ इसका भी मतलब आपको गहराई में, क्योंकि चलो खुला टाइम है तो कोई बताता हूँ मैं। सिस्टर आपके पास, आपने दो चीजें बनाई हैं, एक आपने स्वीट डिश बनाई है और एक आपने नमकीन चीज लेके आए। मुझे दोनों के टेस्ट का नहीं पता है, दोनों के टेस्ट का नहीं पता है। कई लोग मीठा पसंद करते हैं, कई लोग
नमकीन
करते। तो मेरी चॉइस क्या होगी इन दोनों में से? मुझे टेस्ट ही नहीं पता दोनों का, तो मैं कैसे सिलेक्ट कैसे करूंगा मेरी फेवरेट चीज कौन सी है, जहां मैं कौन सी ज्यादा खाऊंगा, है ना? इसी तरीके से जब हमें पता ही नहीं कौन सा जीवन सही है कौन सा जीवन गलत है, तो हम कैसे फैसला लेंगे कि मुझे ये रास्ता लेना है या ये रास्ता लेना है, ये रास्ते की मंजिल क्या है और ये रास्ते की मंजिल क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी ये जीवन जो पहला जीवन है जिसमें परमेश्वर ने हमें विनाश के हवाले छोड़ा, इसका नतीजा तो हम देख रहे हैं। इसकी मंजिल क्या है?
मौत है।
इसकी मंजिल क्या है? मौत,
मौत है।
लेकिन परमेश्वर यही जीवन में आपको एक और मौका देगा जिसमें आपको अच्छाई का स्वाद चखाएगा और अच्छाई से आपको बताएगा कि अगर अच्छाई का रास्ता इख्तियार करते हो तो सदा का जीवन मिलेगा। तो अब तुम फैसला लो, अब क्या करो, तुम फैसला लो कि क्या करना है, ये रास्ता लेना है या ये रास्ता। जो फिर से ये रास्ता लेंगे उनको मिलेगी कौन सी मौत? दूसरी मौत। बाइबल में कितनी मौत है? सिर्फ दो ही मौत है। पहली मौत तो हम सब मरने वाले हैं, दूसरी मौत सिर्फ वो मरेंगे जो जो स्वीकार नहीं करेंगे। तो हर एक इंसान को एक तरह के दो जीवन मिल रहे हैं, जन्म नहीं जीवन, क्योंकि जन्म हमारा एक ही बार माँ की कोख से हो रहा है, लेकिन जब पुनर्थान होगा तो पुनर्थान माँ की कोख से नहीं होगा। टेस्ट मैच
इंग्लिश बोल सकते
जी,
एक्चुअली क्या परमेश्वर आपसे कह रहे हो, परमेश्वर हमें एक बार मरने के बाद हम नहीं सुधरे तो दूसरी बार भी चांस दे रहा है, उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरते ना फिर परमेश्वर हमें उसको ज्ञान से वंचित करेगा।
नहीं 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 नहीं, सुधरने का चांस परमेश्वर एक ही बार दे रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये और
एक्सपीरियंस मान लो, इस जन्म में परमेश्वर
ये तजुर्बा तजुर्बा
नेक्स्ट बार जो हम जन्म ले हम च्वाइस कर सकते हैं कि हमने कौन सा जीवन
ले। क्योंकि इस पाप के रास्ते पे हमें क्या मिलती है, बीमारियां, टेंशन, परेशानियां, मृत्यु।
तो उसके बाद प्रभु हमें ज्ञान देंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये रास्ता पाप है, हमने सब कुछ भोग चुके हैं, अब हम दूसरे जन्म में अच्छे बने। तब परमेश्वर ने वादा किया कि हम तुझे वचन का, फिर तुझे पहले बताऊंगा फिर तुझे वचन का ज्ञान।
आप एक सिंपल सी चीज, हमारे बाल व्हाइट होते, मेरी दाढ़ी भी हो रही, ये किस चीज की निशानी है?
ये हमारे बुढ़ापे की।
तो बुढ़ापा किस चीज की निशानी है? कि हमारा मौत के फासला जो है वो कम हो रहा है,
दिन हमारे कम हो रहे
हैं, ठीक है। बुढ़ापा किस चीज की निशानी है? कि हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप बढ़ गया है और क्या बोलते हैं हम क्या जैसे मैंने बोला था ना शताब्दी एक्सप्रेस बहुत जल्दी रास्ता फासला तय हो रहा है, तो ये पाप की वजह से हमारा जो फासला है वो मृत्यु की तरफ जो है वो कम होता जा रहा है ना। तो ये तजुर्बा है, ये है हर रोज का मरना। इसे हम हर रोज मरते हैं, हम हर रोज क्या कर रहे हैं, कमाना, ये टेंशन परेशानी पता नहीं क्या क्या, यही सब चीजें बुढ़ापा लेके आती है ना। बोलते जो पैसे वाला होता है उससे जवानी दिखती है। सलमान खान 50 साल का हो गया है लेकिन वो लगता है 50 साल का, ऐसा है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। हम जिन पे या नॉर्मल संसार जिसकी बात करें तो इनके पास यही कमाना है, ये करना है, वो टेंशन, इतना है, ये करना है, वो करना है, इतने में मरते मरते रोज मरते रोज मरते रोज मरते ही जा रहे हैं। तो फिर परमेश्वर दिखाएगा एक अच्छा जीवन, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य में बोला 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा जिसमें सब चीजों का सुधार करेगा प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद फिर शैतान छोड़ा जाएगा, शैतान फिर लोगों को अपने पीछे लगाएगा। लेकिन अब क्या होगा? अब परमेश्वर देखेगा कि इनको दो जीवन दिए मैंने, हाँ
कि ये सब गलत रास्ता,
हाँ परमेश्वर आजादी देता है। परमेश्वर बोलेगा ठीक है तुम अपनी मर्जी करो, अभी शैतान का पीछा करना है या तो फिर अंत क्या करेगा परमेश्वर? शैतान के साथ वो मनुष्य जाति जो शैतान का पीछा करेगी सब दूसरी मौत, नाश, ठीक है। ये है परमेश्वर की योजना जो धीरे धीरे हम देख लेंगे। तो हम बात कर रहे थे परमेश्वर की उदारता का अगला स्टेप क्या है? पाप से छुटकारा। और वो कैसे होगा? सत्य का ज्ञान देके, ठीक है। योहन्ना 17:17 पढ़ लीजिए।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
तेरा वचन सत्य है। तो पवित्रता सफाई पाप से कैसे होगी? वचन के द्वारा, वचन के बिना नहीं। तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के सत्य के वचन का ज्ञान पाप से सफाई करेगा। लोग वचन को जब मानना शुरू कर देंगे, आज लोग वचन को मानते नहीं है, ईसाई भी वचन को मानते नहीं है, इसलिए पाप से छुटकारा नहीं हो रहा है। तो उस वक्त जब मुर्दों का पुनर्थान होगा, उसके बाद जब ये वचन सिखाया जाएगा, उस वक्त आपको पता है एक बीज बोने के लिए जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है। और जमीन को जब तैयार करना पड़ता है तो दुख लगता है, क्योंकि वो लोहे के टिल्लर जमीन में चलते हैं, जमीन फाड़ी जाती है। इसी तरीके से आज पाप मृत्यु से मृत्यु आ रही है। तो परमेश्वर ने अनुमति दी है, ये पढ़ लिया रोमियो 8:20-21 में, परमेश्वर ने विनाश के हवाले कर दिया, कोई बात नहीं, इसको तैयार होने दो, पुनर्थान करूंगा इनका, इनके दिल तैयार होंगे मेरे वचन स्वीकार करने के लिए। तो ये बात पढ़ लो साफ साफ, परमेश्वर के वचन का ज्ञान सारी धरती पे भर जाएगा। हबकूक 2:14 जी, हबकूक 2:14
है तो। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड झुंड के बैठेंगे उसके खम्भों की,
नहीं नहीं हबकूक 2:14
हाँ, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है।
ये पृथ्वी भर रही है, ये स्वर्ग नहीं, ये देख लो, ये भविष्यवाणी है। यशाया 11:9 भी पढ़ लो। जी 11 का 9
मैं सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा
जी,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा
है। देखा
दोनों ने दिया
तो ये कैसे होगा ये आज हमारी आंखों के सामने है, लेकिन आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। आपके घर के सामने इधर गली में जाओ, आगे टेंट लग रहा है और स्पीकर व्हीकल सेट हो रहे हैं, आपको क्या लगेगा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है? ऐसे ही सत्य के वचन का ज्ञान लगने वालों के सामने आज ये जो कुछ हो रहा है ये एक नमूना है। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कभी हमने महसूस नहीं किया ये कैसे होगा। आपने देखा होगा पिछले 70-80 साल में सब कुछ कितना फास्ट हो गया है। कंप्यूटर आजकल लगभग सब घरों में जरूरत बन गया है, टेलीफोन और इंटरनेट, VCD, DVD, TV, सब जगह है। आप है किसी कोई घर जहां पर टीवी ना हो? तो यही चीजों के जरिए से ये चीजें फैलेगी, ज्ञान फैलेगा, परमेश्वर के सत्य का वचन असली ज्ञान फैलेगा, ठीक है। और इसके जरिए से परमेश्वर का ज्ञान फैलाया जाएगा। जब हम बढ़ जाएंगे ज्ञान में ना, मैं बताऊंगा आपको प्रकाशित वाक्य में, अगर आपने पढ़ा हो प्रकाशित वाक्य, उसमें बोलता है सातवें दूत ने एक कटोरा लिया और हवा में डाल दिया। वो हवा क्या है वो मैं बताऊंगा गहराई से, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता, वो हवा है सैटेलाइट। वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ है तो कैसे, वो मैं आने वाले दिनों में, बहुत बड़ी बातें हैं वो। तो स्थिति ऐसी हो जाएगी धरती पे जब ये होगा, आज परमेश्वर का ज्ञान भर जाएगा धरती पे, जब सबको बाइबल का ज्ञान हो जाएगा, सब जान लेंगे कि सच्चा परमेश्वर तो पिता परमेश्वर है, कोई और नहीं। स्थिति क्या होगी, यरमिया 31:34 में पढ़ लो। जी
तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना कहना पड़ेगा कि यहोवा के जनों, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा।
तो ब्रदर शर्मा जी को जरूरत नहीं है फिर जाके लोगों को बताने की के जानू, सब जान लेंगे कौन है परमेश्वर और क्या है।
कोई सुसमाचार
नहीं, नहीं सुसमाचार वचन का ज्ञान देना है, लेकिन सबको परमेश्वर का ज्ञान, मतलब परमेश्वर के बारे में पता होगा तो वो करेंगे। तो
इकतीस की चौंतीस
तो ये है परमेश्वर का उदारता का प्लान, योजना के पहले मृत्यु से बचाना है, फिर सत्य का ज्ञान देना है जिससे पाप से छुटकारा हो, ताकि वापस मनुष्य संपूर्ण बन जाए, बिना पाप वाला बन जाए। परमेश्वर का यही है कि मैंने इंसान संपूर्ण बनाया था, मुझे वापस संपूर्ण बनाना है और बिना मृत्यु के। तो बिना मृत्यु कब होगा, जब पाप छोड़ देंगे, तब पाप की मजदूरी
हमारा जब पुनरुत्थान का जन्म होगा और हम उस जन्म को चुनेंगे और हमें फिर परमेश्वर वचन का ज्ञान देगा,
ज्ञान पे चलना है फिर। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हम डिनाई कर दें, उस वक्त इनकार करने वाला तो दूसरी मृत्यु जाएगा। हाँ, फिर कोई चांस नहीं, दो ही मृत्यु है, पहली मृत्यु से छुटकारा है, दूसरी मृत्यु से कोई छुटकारा नहीं है, बाइबल उसके बारे में नहीं बोल रही है। तो ये सब जानने के बाद एक प्रश्न आता है, भैया आप बोल रहे हो सब जितने मर गए हैं, हम तो अभी बोल रहे हैं अरे आबादी इतनी बढ़ गई है, वो सब कहाँ रहेंगे? हमारे मान लो आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप आ जाएंगे तो आप तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे सब? ये टेंशन आ जाती है। तो उसके लिए परमेश्वर ने जब अर्जुन की वाटिका में आदम को आशीष जी क्या बोला, जाओ और जाके धरती को क्या कर दो, धरती को भर दो। पढ़ो उत्पत्ति 1:28। उत्पत्ति 1:28।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा, फूलों को लो और पृथ्वी में भर जाओ।
भर जाओ इंग्लिश में है फिल द अर्थ। आप ये देखिए, परमेश्वर ने साफ साफ बोला धरती को भर दो। जरा आप सोचो, थिएटर में जब हम जाते हैं टिकट लेने, जब टिकटें पूरी बिक जाती हैं तो क्या हो जाता है,
हाउसफुल।
और पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपके पास गाड़ी, आप बोलते हो टैंकी फुल कर दो, भरने वाले को महसूस हो जाता है। अगर इंसान, गिरा हुआ इंसान इतनी समझ रखता है तो परमेश्वर को नहीं पता कि कहाँ पे जमने का सिलसिला बंद करना है। परमेश्वर ने भरने के लिए बोला है, ओवरफिल करने के लिए नहीं बोला है, हद से ज्यादा भरने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो परमेश्वर को तो इतना तो दिख रहा है ना, और वो आज हमारी आंखों में देख रहे। आज से आपने, जब आपके जमाने थे ब्रदर, उस वक्त चार 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 पांच पांच बच्चे होते थे परिवारों में, उससे पहले दस दस ग्यारह ग्यारह होते थे। एक समय आया आज से पांच सात साल पहले, बोलते दो हम दो हमारे दो। आज स्थिति कहां तक पहुंच गई है, हम दो हमारे एक। अब एक को ही पालना इतना मुश्किल है, बोलते यार। और दूसरी बात ये है, आजकल आप देखो हॉस्पिटल में जाके कोई भी जोड़ा, नया शादीशुदा जोड़ा, उसको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है बच्चा प्राप्त करने के लिए। मुझे खुद करनी पड़ी ये चीज।
सही बात है, ये तो बिल्कुल सही।
ठीक है, तो परमेश्वर भलीभांति जानता है कहाँ पे पैदा होने का सिलसिला खत्म करना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जब पुनर्थान शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद ये जन्म का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दूसरे पुनर्थान के बाद आप ये शादी वाले सिलसिले,
क्योंकि हम इतने धर्मी हो जाएंगे ना, पापी रहेंगे नहीं।
हाँ,
पाप आया तब जब हमें ये सब कुछ ज्ञान था
जी, तो
हमारा फिनिश हो
जी, तो ये जमने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दूसरी बात रही कि इतने लोग रहेंगे कहाँ, उसके लिए ये कैलकुलेशन है ब्रदर। ये देखिए, इस कैलकुलेशन में 1840 में जो पॉपुलेशन थी वो थी कुछ 60 करोड़। ठीक है, तो अंदाजा लगाओ कि 30 करोड़ पहले मर गए और जितने इसके बाद है। तो उस वक्त की कैलकुलेशन की तो देखा, इंडिया का जो एरिया है ना, क्षेत्रफल, जो इंडिया का क्षेत्रफल है, उसमें अगर सेटल करना हो सारे वर्ल्ड को, मैं इंडिया वालों की नहीं बात कर रहा, सारे वर्ल्ड को, तो हर एक के हिस्से 24x15 का प्लॉट आता है।
अभी पहले
हाँ, अभी लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, उसमें जोड़ लो, इतनी धरती है, कितनी पहाड़ियां हैं। परमेश्वर के लिए मुश्किल है क्या ये चीज करना? ये अगर उसकी आत्मा पानियों पे फिर के धरती बना सकती है तो क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। ठीक है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, कहाँ रहेंगे वो आके, ये परमेश्वर को भली भांति पता है। ठीक है, तो सचमुच सब मुर्दे जी उठेंगे जीवन के लिए, और परमेश्वर ने ये बहुत अच्छे से योजना बनाई है, बहुत अच्छी योजना बनाई है। एक वचन जिसका गलत अर्थ निकाल दिया गया है वो वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:29। अट्ठाईस पढ़ा ना हमने, अचंभा मत करो क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों।
5:29।
हाँ जी, इसका थोड़ा अनुवाद में गलती हुई है।
जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
दंड के पुनरुत्थान, तो यहाँ पे थोड़ी अनुवादित गलती हुई, क्योंकि अगर आपको नोट किया जाए, पाप का दंड क्या है?
मृत्यु।
मृत्यु सबको मिल रही है। अभी इससे बढ़ के और दंड क्या है परमेश्वर ने बोला? तो दंड तो पहले ही हम पा चुके हैं ना, दंड तो पहले पा चुके। अब ये पुनर्थान किस चीज के लिए होगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ी अनुवादित गलती हुई है, क्योंकि यूहन्ना 3:17 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर तो इस संसार को बचाने आया, उसको नाश करने नहीं आया। प्रभु तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले यूहन्ना 3:17 पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में
हाँ जी
इसलिए भेजा कि परमेश्वर
ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार
पाए।
पाप के दंड के लिए। तो इसका मैं मतलब बताता हूँ, अभी उस वचन का मतलब क्या है। ये सारा संसार पहले ही मृत्यु का दंड के अधीन है, दंड पा चुका है। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उनको बचाए। अभी ये जो यूहन्ना 5:29 है, इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुआ था दंड, जो दंड शब्द आया है उसका शब्द था, ग्रीक शब्द था क्राइसिस, KRISIS क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब होता है इमरजेंसी, या ICU में अगर कोई पड़ा हो ना उसको क्या बोलते हैं, ये इसके जीवन के लाले पड़ गए हैं, इंग्लिश में बोलते हैं या सांसें गिन रहा है, वो क्राइसिस में है। क्राइसिस मतलब इमरजेंसी की स्थिति। तो इसी तरीके से ये सारी जो मनुष्य जाति है वो एक इमरजेंसी है में है, न्याय के लिए है। उनका जो पुनर्थान होगा वो न्याय के लिए, और वो न्याय क्या होगा, ICU में जब किसी को रखा जाता है किस चीज के लिए रखा जाता है, ताकि उसको
बचाया जाए।
तो वो न्याय का दिन होगा प्रभु यीशु मसीह का, वो उस वक्त न्याय होगा, वो क्राइसिस का दिन होगा, उनको बचाना है। उनको क्या करना है जरा आप सोचिए, ये कैसा न्याय होगा। मैं मरा हुआ हूं, एक बार मैं मृत्यु का दंड पा लिया, मेरा पुनर्थान हो रहा है फिर से दंड देने के लिए, ये कैसा न्याय है?
परमेश्वर ने तो बोला था एक ही बार तो मैं सब कुछ दिखा दिया।
हाँ।
कि देखो ये सत्य, आप जो नया जन्म होगा
हाँ।
वो तुम अपना
बचाने के लिए
बचाने के
लिए, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह तो संसार को बचाने आए ताकि सब उद्धार पाए, सबको मृत्यु से छुटकारा मिल गया। अब जो पुनर्थान होगा वो पुनर्थान होगा इसलिए, हाँ पुनर्थान के बाद आपको क्या किया जाएगा, शर्मिंदा। शर्मिंदा कैसे किया जाएगा, मान लो मैं आपके साथ कोई, या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोई गलत कर दिया, कत्ल कर दिया, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, कत्ल कर दिया, किसी को नहीं पता चला किसने मार दिया। आजकल ऐसे केसेस बहुत है ना, मार के पता नहीं चलता कौन है, और कोई गलत ही सजा पा जाता है, किसी गलत को सजा दे दी जाती। उस वक्त जो पुनर्थान जब दोनों का हो जाएगा, मरने वाले का भी मारने वाले का भी, तो वो बोलेगा भैया तुमने मुझे क्यों मारा था। फिर सबको सच्चाई पता चलेगी, अरे तुमने मारा था, अरे सजा तो उसको मिल गई, अरे या फिर किसी ने धोखा किया, यार तुमने मुझसे धोखा, वो सब प्रकट किया जाएगा न्याय के दिन में। जब प्रकट किया जाएगा तो क्या होगी, मेरी नजर कैसे होगी आपके साथ, नजर नहीं मिला पाऊंगा।
लेकिन पर्सनली तो बोलता है कि वहाँ कोई ये ज्ञान नहीं होगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, यदि पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसने मेरे साथ बुरा किया।
नहीं 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 नहीं, आपको किसने बोला ऐसा, पुनर्थान
वो ज्ञान होगा मरने के बाद भी।
अरे सर पुनर्थान के बाद, मैं पुनर्थान की स्थिति बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर मर रहा तो क्या बोला, सो रहा है। जब हम रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमें सब कुछ भूल गया होता है, ऐसे ही मौत में जब कोई जाता है वो क्या हो गया,
सो चुका है।
लेकिन जब पुनर्थान होगा उसको पता होगा, मैं अजय, मैं ब्रदर JP शर्मा वापस अपने घर को जाएगा, वो चल के वापस जाएगा अपने रिश्तेदार। ऐसे तो पुनर्थान होगा तो कोई भी किसी के घर भी चला जाएगा, इंसान वही रहेगा, यादस्त भी वही रहेगी, पाप भी याद रहेगा।
लोग बोलते हैं कि मरने के बाद ना सबका न्याय होगा, ऐसे बोलते हैं ना, वचन बोलते हैं सबका न्याय होगा, वहाँ ना तेरी कोई माता होगी ना कोई तेरा बेटा होगा, ये सारे रिश्ते कुछ नहीं होंगे।
ये तो ब्रदर ये तो बाइबल की सच्चाई नहीं है। न्याय कैसा होगा, न्याय तो बताता है
जो जैसा आप जैसा बोल रहे हो आपका सबका इंडिविजुअल न्याय होना है, वहाँ कोई रिश्ते नहीं होंगे आपके।
मैं बताऊंगा न्याय के दिन के बारे में भी, न्याय के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, कोठड़ियों पे चढ़ के पब्लिकली सबको बताया जाएगा तुमने ये किया। वो वचन पढ़ा हुआ है, सुना वचन वो
कोठड़ियों पे चढ़ के,
हाँ कि सबके सामने बताया जाएगा तुमने ये किया है। ये कहाँ आपने कहा, मैं बताऊंगा आपको फिर से, ठीक है। तो न्याय का दिन के बारे में तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17:31। जी 31
क्योंकि उसने
क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वे उस समय उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित की कर दी है।
एक दिन ठहराया छोड़ा है जिस दिन वो का ईसाई लोग समझते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा 24 घंटे में क्या करेगा, न्याय करेगा, धार 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 धार, चल भाई ब्रदर जेपी शर्मा की फाइल लो, ब्रदर तुमने ये किया, चलो सिस्टर की फाइल लो, के ये
एक दिन तो एक
साल, हजार साल लगेगा न्याय के लिए, हजार
वो भी कम पड़ जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, हजार साल में प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, और न्याय कैसे होगा ये आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं। हर साल को हर इंसान को 100 साल का समय दिया जाएगा सुधरने के लिए। अब यस 100 साल अगर 100 साल में सुधर गए तो वापस जवानी के दिनों में जाओगे, अगर 100 साल में नहीं सुधरे तो सीधा दूसरी मृत्यु। ये कहाँ पे वचन है, ये मैं आने वाले दिनों के एडवांस बता रहा हूँ आपको कि इसलिए कि क्योंकि आप प्रभु से बहुत प्रेम रखते हैं। एक और वचन पढ़ते हैं दानियल 12:2 जिसमें यही जो हमने 5:29 पढ़ा है ना, सेम ऐसा ही वचन।
जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत
घिनौने यानी शर्मिंदे। सदा नहीं है यहाँ पे भी गलत है, सदा नहीं है, ये है एज लास्टिंग यानी युग के अंत तक। कौन सा युग, 1000 साल का युग जिसमें प्रभु न्याय करेगा। और वो जो वचन मैं आपको बोल रहा था वो पढ़ लीजिए
12:2
थी। तो ये जो वचन अभी आपको बोला ना मैंने कि सब कुछ पब्लिकली बताया जाएगा, ये वचन पढ़ो लूका 12:2-3।
कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। अच्छा
आगे पढ़ लो
और आगे।
हाँ जी,
मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ।
नहीं बस ठीक है, हाँ ये 2-3 हो गया ना।
हाँ, दो तीन
तो ये देख लो, सब कुछ धोखा, ये सब कुछ बाहर लाया जाएगा।
लोग छुपा रहे हैं, लोगों से छुपाते हैं, कानफूसी करते हैं,
ये सब कुछ पब्लिकली बताया जाएगा। भैया एक जज है, एक जज बैठा है, प्रभु यीशु मसीह जज होगा, उसके सामने लाया जाएगा। हाँ जी, आपने ये किया, ये स्वीकार करते हो? यस प्रभु, आप तो सब जानते हो।
इसमें चैप्टर दिया हुआ, विषय दिया हुआ, पाखंडीपन को विरुद्ध चेतावनी। ये हम फुसफुसी हो करते हैं, किसी गला बोलते हैं, ये पाखंडीपन वाली बात है। बता रहा है पखंडी,
पखंडी हाँ पखंडी जो कपटी जिसे बोलता ना हे कपटी गर्म थी वो बहुत गंदी चीज है पखंड करना। ठीक है,
क्या मुंह पर ऊपर से कुछ और बोलते हैं अंदर से कुछ और बोलते हैं उसका ये पूरा करता है।
तो एक और इसी चीज का वचन पढ़ो, यही ऐसे ही वचन एक और पढ़ो पुराने नियम में सबोपदेशक 12:14
12:14 क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी हो न्याय करेगा।
हर एक चीज का न्याय करेगा परमेश्वर, परमेश्वर हमारा ऐसा है। आपकी बात का भी न्याय होगा ब्रदर्स, एक बंद कमरे में जो बात हुई है वो छत पे बैठ के खोली जाएगी। ठीक है, तो ये तो वचन बोल रहा है। तो अभी एक एक क्लास के अंत में हम पहुंच चुके हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है, 1 तिमोथी 2:5-6 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, 1 तिमोथी 2:5-6
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विद्वई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई।
प्रभु यीशु मसीह ने अभी एक छुटकारे का दिन जीवन दिया, छुटकारे का दाम दिया अपना जीवन। 2:5-6 तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय सृष्टि थी आत्मिक सृष्टि थी इंसान बना। इंसान कौन, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना क्या कर दिया, जीवन बलिदान कर दिया। अभी वो उस जीवन को वापस ले सकता है,
वो तो बिचौलिया बन गया ना।
उदाहरण मैं लेता हूँ, आप ये घर है, ये घर आप बोलो कि मैं इसकी छुटकारे की कीमत मैं ले रहा हूँ, आपको कोई इसके छुटकारे की कीमत दे रहा है, मान लो 10 लाख, 10 लाख आपने लिया, बाद में आप इस घर को ले सकते हो,
नहीं,
नहीं ले सकते। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना जीवन अपना शरीर, यानी यीशु मसीह जो शरीर था जो एक इंसान था वो क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, छुटकारे की कीमत दे दी वापस लेने के लिए। नहीं, कभी प्रभु यीशु मसीह अब शरीर में वापस नहीं आएगा, मतलब उस शरीर में जो उसने दिया,
जो हमारे पापों के लिए दिया था।
यस, ये जो ये तो एक कल्पना है, जो यीशु मसीह शरीर था वो प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं लेगा। नहीं तो एक बात मैं बताता हूँ आपको, एक बात सिंपल सी, ब्रदर जेपी आपको क्या करना है, आपको मैं एक तसल्ली देता हूँ कि आपको मरना है, लेकिन मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि आप तीसरे दिन जी उठोगे, तो आप तो खुशी खुशी ये मैं करता हूँ, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बात तो तब बनी ब्रदर जेपी आपको मरना है आपको,
और ये नहीं बोला गया कि तू जिएगा।
यस यस, तो आप समझ रहे हो ये बात। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन दिया वापस लेने के लिए नहीं, ये तो पत्रस बोल रहा है, 1 पत्रस 3:18 पढ़ लो, और प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बोलता है पढ़ लो ये बात,
3:18
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जगाया गया।
शारीरिक रूप में वो खत्म हो गया, आत्मिक रूप में जीवित। और प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं यूहन्ना 14:19 में पढ़ लो, यह प्रभु यीशु मसीह की खुद की जुबान है। 14:19
और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे।
ये संसार मुझे
नहीं देखे,
फिर देखेगा। लेकिन ईसाई बोलते हैं हमारा प्रभु बादलों के साथ आएगा, सारी दुनिया देखेगी। प्रभु बोलता है मुझे दुनिया देख नहीं पाएगी, है ना?
लेकिन प्रभु ने बोला सिर्फ प्रेतों के लिए बोला था
ये,
तुम मुझे देखोगे,
तुम देखोगे।
पूरा
वो भी शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, आत्मिक आंखों से देखोगे। ठीक है,
वो आत्मिक से, तभी तो उन्होंने बोला था कि देखो,
हाँ,
मेरी हाथों में उंगलियां डाल के देखो।
यस, तो ये प्रभु का, प्रभु शारीरिक रूप से अपना शरीर त्याग चुके हैं, शरीर उन्होंने बलिदान कर दिया है वापस लेने के लिए नहीं। और अंत में एक और वचन प्रभु यीशु मसीह के छिड़ौती के बारे में, मुसलमान इसको, और एक किताब भी आई थी द विंकी कोड, उसमें बोला था कि एक वचन है बाइबल में जिसमें बोला वो अपना वंश देखेगा। यशाया 53:10 पढ़ लो, यशाया 53:10।
तो भी योवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से योवा की इच्छा पूरी हो जाएगी।
बिल्कुल, तो वंश देख पाए। ये वचन लेके कई लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया, कि एक किताब भी निकाली कि प्रभु यीशु मसीह का तो मरियम मगदलीनी के साथ शादी हुई थी। द विंकी कोड करके किताब है, उसमें एक आई जिसमें बोला प्रभु यीशु मसीह की शादी हुई थी, लेकिन क्या ये सच है? क्यों? उसका कारण है। क्या कारण है? अगर प्रभु यीशु मसीह शादी करते तो कोई गलत काम नहीं है, शादी कोई गलत
क्योंकि उन्होंने तो जगत को खुद दे दिया था।
हाँ,
तुम पाप करने चाहते शादी कर लो वो अच्छा है।
हाँ, तो शादी कर लेते तो कोई गलत चीज नहीं होती, लेकिन शादी करने के बाद जो होता वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्या होता? प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण थे, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु नहीं थी, और जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे पैदा होते वो भी क्या होते?
वो भी संपूर्ण नहीं होते,
वो संपूर्ण होते, वो संपूर्ण होते, क्योंकि जीवन किससे आता है?
परमेश्वर से।
जीवन तो बाप से आता है ना, पति और पत्नी के, है ना? तो अगर संपूर्ण बच्चे पैदा होते तो वो मृत्यु नहीं पाते, उन पे मृत्यु नहीं होती।
प्रभु की तरह होते संसार।
हाँ,
तो वैसे ही सारे लोग संपूर्ण।
हाँ, तो ये परमेश्वर
की
इच्छा
कैसे पूरी होती?
हाँ, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी, इसलिए प्रभु की शादी नहीं हुई थी। अभी ये क्यों बोला वो अपना वंश देख पाएगा? क्योंकि ये जो दूसरा जीवन मिल रहा है सारी मनुष्य जाति को, ये किसकी वजह से?
प्रभु
यीशु। यस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए कीमत चुकाई है। तो जीवन, मैंने बोला जीवन हमेशा बाप से आता है, बाप से आता है ना। अगर माँ बोलती, माँ अपना हक तो जताती है, लेकिन असली सोर्स कौन है जीवन का?
प्रभु यीशु मसीह।
बाप से आता है ना,
बाप
से वो जाता है पत्नी के को, और पत्नी उसको 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन आया कहाँ से है? बाप से। तो आदम से मिला हमें हमारा पहला जीवन, लेकिन ये जो दूसरा जीवन मिल रहा है वो किसकी वजह से?
यीशु मसीह
के। यस, यीशु मसीह ने बलिदान दिया, यीशु मसीह ने छुटकारा करवाया, और तुम्हें मिला है नया जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति का बाप बन जाएगा या नहीं बन जाएगा?
बन जाएगा, क्योंकि वो आत्मिक पिता है, वो शारीरिक पिता नहीं ठहराएगा।
हाँ, वो इसलिए बोला वो अपना वंश देख पाएगा, वंश का मतलब मनुष्य जाति सारी उसकी संतान होगी। तो देखिए कितना सुंदर हमारा है बचाने वाला, कितना महान है हमारा बचाने वाला। और जब ये धरती परमेश्वर की महिमा से, ज्ञान से, सत्य के वचन से भर जाएगी ना। हम तो आज कोशिश कर रहे हैं ना कि सारी दुनिया को बदलना है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना है पुनर्थान के बाद सबको बदलना है, क्योंकि पहले बचाया जाना है।
हम पहले सोच रहे हैं,
पहले बचाया जाना है, फिर सत्य का ज्ञान देना है, फिर वो जानेंगे। और जब जान लेंगे स्थिति क्या होगी, फिलिपियां 2:10-11, जब लोगों को पता चलेगा अरे ये नया जीवन मिला है हमें यीशु की वजह से, यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, यीशु ने हमें मौत से छुटकारा दिलवाया, तब जाके स्थिति होगी ये जो फिलिपियां 2:10-11 में जो हम पढ़ते हैं।
फिलिपियां
2:10-11
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है।
देखो प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, ये कब मानेंगे लोग, जब पता चलेगा अरे हमारा पुनर्थान हमारे देवी देवताओं की वजह से नहीं हुआ है, हमारा पुनर्थान तो प्रभु की है। तो फिर रहेगी कोई गुंजाइश कि मैं बताऊं किसी को जाके, अरे यार सब मान लेंगे यार।
2:10-11
ठीक है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस की रहस्य की क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि सबका पुनर्थान होना है। जाओ ये खुशखबरी सबको बताओ, ताकि वो हमारे पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र के बहुत बड़े प्यार और बलिदान को माने और उसके पवित्र नाम की क्या करें, पूजा करें। इसी के साथ परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन।